بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، देखो आज मजलिस नंबर 20 है, 20। छोटों पर ज्यादती की सूरत में माफी मांगना, छोटों से माफी मांगना, कभी ज्यादती हो जाए तो माफी मांगना चाहिए। तकबुर की बातें चल रही, तकबुर के इलाज चल रहे हैं, तो उसमें भी एक इलाज है। एक मलफूज में हजरत वाला ने इरशाद फरमाया जी, बाज औकात एक ख्याल होता है कि अगर हम सरी अल्फाज में, साफ अल्फाज में अपने से छोटे से माफी मांगेंगे तो ये गुस्ताख होकर, बेअदब होकर ज्यादा नाफरमानी करेंगे। तो बाज औकात एक ख्याल होता है कि अगर हम माफी मांगेंगे तो ये शर्मिंदा होगा, मगर ये उजर उस वक्त है जब उससे ताल्लुक रखना चाहे। तो उन सूरतों में सिर्फ उसको खुश कर देना, उम्मीद है कि माफी के कायम मुकाम हो जाएगा। जब उससे आगे भी ताल्लुक रखना चाहे तो उसको खुश कर दो, तो उससे उम्मीद है कि माफी के कायम मुकाम हो जाएगा। और बाज औकात उससे आइंदा ताल्लुक ही नहीं रखना, जैसे मुलाजिम को मौकूफ कर दिया, यानी एक काम वालों को निकाल दिया, या मुलाजिम खुद अपनी मुलाजिमत छोड़कर जाने लगा, या सर्विस करने वाला अपनी सर्विस छोड़कर जाने लगा, या तो निकाला या जा रहा है, तो उस वक्त जरूरी है कि ज्यादती हो जाने की सूरत में उससे सरी और साफ माफी मांगी जाए, क्योंकि यहां वो दोनों उजर मौजूद है, यहां वो दोनों उजर मौजूद नहीं है, दोनों उजर मौजूद नहीं। उसमें अगर रुकावट हो, अगर उसमें भी माफी मांगने में रुकावट हो, तो मेरे नजदीक उसका सबब जरूर किब्र है। गो अपने को बड़ा न समझे, मगर किब्र के मुक्तजा पर अमल तो हुआ, गायत से गायत ज्यादा से ज्यादा किब्र एतिकादी न होगा, अकीदे में किब्र नहीं है लेकिन अमल तो किब्र का ही है, मगर किब्र अमल ही तो जरूर है। अगर कोई शख्स किब्र की तकसीम को तस्लीम न करे तब भी जुल्म तो हुआ कि जिससे माफी मांगना वाजिब है, लिहाजा माफी न मांगने में अगर किब्र का गुना न हुआ तो जुल्म का गुना तो हुआ, जुल्म का गुना तो हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक अमली किब्र है, एक एतिकादी किब्र है। तो अंदर से तो किब्र नहीं है लेकिन जाहिरन तो किब्र का है कि तुम माफी क्यों नहीं मांग रहे। तो माफी न मांगे तो चलो कुछ नहीं, तो फरमाया ये तो जुल्म तो जरूर हुआ, क्योंकि कुछ न कुछ जुल्म तो जरूर हुआ। अब ये तो हजरत की बात थी, अब उसका तर्जुमा हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ये मसला अक्सर लोगों को बकसरत पेश आता है, ये मसला अक्सर लोगों को बकसरत पेश आता है। मसलन अगर कोई शख्स अफसर है और लोग उसके मातहत काम करते हैं, उसको ये मसला पेश आता है। इसी तरह बाप को अपने बेटे के साथ ये मसला पेश आता है, इसी तरह उस्ताद को अपने शागिर्दों के साथ ये मसला पेश आता है, इसी तरह शेख को अपने मुरीदों के साथ ये मसला पेश आता है, इसी तरह एक दुकानदार अपने मातहतों के साथ ये मसला पेश आता है। वो ये कि बाज औकात अपने मातहत को या अपने बेटे को या अपने शागिर्द को या अपने मुरीद को किसी गलती पर तनब्बुह करने में ज्यादती हो जाती है, तनब्बुह करने में ज्यादती हो जाती है। जितनी तनब्बू करनी चाहिए थी, यानी जितनी उसको डांट देनी चाहिए थी। जी जितनी डांट देनी चाहिए थी उससे ज्यादा कर दी, या जितना उसको डांटना चाहिए था उससे ज्यादा डांट दिया, या जितनी सजा देनी चाहिए थी उससे ज्यादा दे दी, या सजा का मौका नहीं था लेकिन उसको गलत सजा दे दी। इस तरह के वाकयात बकसरत पेश आते हैं। जी तो देख लो ना, मिक्सर चालू है, वैसे तो चालू है। जी चल रहा है। तो बकसरत पेश आते हैं। तो अब सीधी बात तो यह है कि जिसके साथ तुमने ज्यादती की है उससे माफी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई। जिससे ज्यादती हुई है उससे माफी मांग लो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन बाज औकात ये ख्याल होता है कि अगर मैं इस तरह साफ अल्फाज में उससे माफी मांगूंगा तो उसके अंदर और ज्यादा नाफरमानी का जज्बा पैदा होगा, हो जाएगा, ये और गुस्ताख हो जाएगा और गलत रास्ते पर चल पड़ेगा, ये वसवसा आता है। तो उसके लिए क्या करना? देखिए, आदमी आदमी में फर्क होता है। कोई आदमी तो ऐसा होता है कि अगर उससे कोई बड़ा आदमी झुक कर बात कर ले, कोई आदमी तो ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा आदमी उससे झुक कर बात कर ले और दब कर बात कर ले तो पानी पानी हो जाता है, उसके नतीजे में हमेशा के लिए उसकी इसलाह हो जाती। लेकिन बाद आदमी ऐसे होते हैं कि अगर उनके साथ किसी बड़े ने झुक कर बात कर दी या दब कर बात कर ली तो वो और शेर हो जाते हैं, शेर पर सवा शेर हो जाते हैं, यानी और ऊपर आ जाते हैं। कहा देखा, वो डर गया। तो बाजों की तबीयत में क्या होता है कि झुक जाओ तो सामने वाला बिल्कुल यानी नरम हो जाता है और वो हो जाता है, लेकिन बाजों के सामने झुको तो फरमाए वो और ज्यादा शेर हो जाते हैं। जी और उसके नतीजे में वो और ज्यादा सरकशी पर उतर आते हैं। मुतनबी शायर बाज औकात बड़ी हकीमाना बातें कहता है, चुनाचो कहता है, इजा अंत अकरम तल करीम मलक तहु व इन अंत अकरम तल लईम तमर्रदा। यानी अगर तुम किसी शरीफ आदमी की इज्जत करोगे और उसका इकराम करोगे तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, शरीफ आदमी की। शरीफ आदमी की इज्जत करोगे, उसका इकराम करोगे तो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा और तुम उसके मालिक बन जाओगे। और अगर तुम किसी कमीने के साथ इज्जत का मामला करोगे तो सरकश हो जाएगा। आगे कहता है, यानी जिस जगह तलवार इस्तेमाल करनी चाहिए थी अगर तुमने वहां सखावत का बर्ताव किया तो ये भी इतना ही मुजिर है जितना कि सखावत के मौका पर तलवार का इस्तेमाल मुजिर है। यानी जिस जगह पर तुम्हें उसको डांटना मानना चाहिए, तलवार इस्तेमाल करनी चाहिए थी, अगर तुमने वहां सखावत का बर्ताव किया यानी उसके साथ में डांटने के बजाय और नरम हो गए तो ये भी उतना ही मुजिर है जितना के सखावत के मौका पर, नरम होने के मौका पर तुम उसको डांट दो। बहरहाल आदमी आदमी में फर्क होता है। शख्स कमाना इंसान, जी शख्स। तो फरमाया बहरहाल आदमी आदमी में फर्क होता है। किसी आदमी के साथ अगर आप तवाजु से पेश आए तो वो बिछ जाएगा और फिर कभी भी सरकशी पर आमदा नहीं होगा, और बाज वो होते हैं कि अगर उनके साथ तवाजु के साथ पेश आओ तो उल्टा सरकश बन जाते हैं। इसलिए बाज औकात दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं अपने से छोटे से माफी मांगूंगा तो वो सरकश हो जाएगा और ज्यादा बदमाश हो जाएगा और ज्यादा नाफरमानी पर उतर आएगा, उसके दिमाग में और ज्यादा खन्नास पैदा हो जाएगा। ये होता है ना, दिल में आता है। तो क्या करो, दो में से एक बात का फैसला कर लो। ऐसी सूरत के बारे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि पहले दो बातों में से एक बात का फैसला कर लो। दो बातों में से एक बात का फैसला कर लो, वो ये कि जिस छोटे के साथ ये मामला पेश आया है आइंदा उससे ताल्लुक बाकी रखना है या नहीं, ये है इसका जवाब। यानी बाद मरता होता ही और ज्यादा सरकश हो जाएगा, और ज्यादा बदमाश हो सकता है, और बाद मरता नरम भी हो सकता है, पता कुछ भी नहीं है। तो अब उसके लिए हजरत फरमाते हैं क्या है कि तुम्हें दो बातों में से एक बात का फैसला कर लो कि आइंदा से ताल्लुक बाकी रखना है या नहीं। मसलन अपने किसी नौकर के साथ ऐसा मामला पेश आ गया तो पहले ये फैसला करो कि आइंदा उसको अपने पास बतौरे मुलाजिम के रखना है या उसको मुलाजिमत से अलाहिदा करना है, पहले ये फैसला कर लो। अगर उसको मुलाजिमत पर बरकरार रखना है तो उस सूरत में नौकर से सरे अल्फाज में माफी मांगने के बजाय, साफ अल्फाज में माफी मांगने के बजाय किसी और उनवान से उसकी दिलदारी कर दी जाए, उसको खुश कर दिया जाए, उसको कोई हदिया, उसको कोई इनाम, कुछ को कुछ को उसके साथ अच्छी बात कर दी जाए, तो उसकी दिलदारी कर दी जाए। मसलन उसको कोई हदिया या तोहफा दे दिया, या उससे हंसी मजाक की मीठी बात कर ली, या उसकी दावत कर दी ताकि उसके नतीजे में वो ये समझे कि मेरे साथ हुस्न सुलूक किया गया है, ऐसा हुस्न सुलूक करके साबिका ज्यादती की तलाफी कर ली जाए, तो उसकी जो पहले ज्यादती हो गई थी वो तलाफी हो। और अगर ये इरादा है कि अब उसको मुलाजिमत पर नहीं रखना बल्कि उसकी मुलाजिमत से छुट्टी करनी है और अब उसके साथ ताल्लुक बरकरार नहीं रखना, तो उस सूरत में चूंकि गुस्ताख या सरकश हो जाने का अंदेशा फजूल और बेकार है, क्योंकि रखना ही नहीं है तो क्या गुस्ताख होगा, बेकार है, इसलिए उस सूरत में सराहतन उस नौकर से माफी मांगनी चाहिए। सराहतन क्या करो, माफी मांगनी चाहिए। चुनांचे जब उस मुलाजिम को रुखसत करो, जब उस मुलाजिम को रुखसत करो तो उसे साफ साफ कह दो कि जो हमसे ज्यादती हुई हो वो हमें माफ कर दो, और खास तौर पर इस ज्यादती का भी जिक्र कर दो कि फुला वक्त में मुझसे ज्यादती हुई थी और मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ कर दो, साफ साफ बता दो। अल्लाह अकबर, देखो कैसा कैसा दीन है, कितना मुश्किल काम है। तकब्बुर कहां से रहेगा, फिर दूर दूर तक भाग जाएगा। ये तकब्बुर की बीमारी का इलाज है जी, ये टेबलेट है, खा लो उसको। जब तुम अपने मुलाजिम से कहोगे कि फुला वक्त मुझसे जो ज्यादती हुई थी मुझे माफ कर दो, इन अल्फाज को जबान से निकालते वक्त मुतकब्बिर के दिल पर आरे चल जाते हैं। हाँ, लेकिन तकब्बुर का इलाज ही ये है कि मुलाजिम को रुखसत करते वक्त साफ अल्फाज में उससे ये अल्फाज कहे। उसका एक फायदा ये होगा कि जब साफ लफ्जों में माफी हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ मुआखजा नहीं होगा कि तुमने अपने मातहत को नाहक सजा दी थी या नाहक डांटा था। और दूसरा फायदा ये होगा कि तकब्बुर की बीमारी का इलाज हो जाएगा। बहुत आसान काम है ना, बहुत इजी काम है जी, कितना आसान काम है, देखो ना, माफी मांगना। हाँ, तो जन्नत ऐसी थोड़ी मिलेगी, जन्नत कितनी सस्ती है देखो, बस माफी मांग लो जन्नत। आज हमने जन्नत को मुश्किल कर दिया, क्या बोले, बहुत सारे नवाफिल पढ़ो उसके बाद जन्नत मिले, और ये तो बिल्कुल शॉर्टकट, माफी मांग लो। अब अपने मातहतों को इस तरीके से माफी मांगना अब छोड़ना है, अल्लाह। हाँ, उसको उसको 1000 की जगह हम 2000 तो दे सकते हैं, लेकिन उसे माफी नहीं मांग सकते। भाई दो नहीं, तू 3 ले जा चल, ताकि वो तलाफी हो जाए, लेकिन यहां तो माफी मांगने का कह रहे हैं। क्योंकि पैसा निकालना आसान लेकिन माफी मांगना मुश्किल, और इलाज तो माफी मांगने से होगा, पैसे निकालने से नहीं होगा। जी, इस कायनात में कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मनसब के बराबर हो सकता है? इस कायनात में हुजूर के मनसब के बराबर कोई हो सकता है? बल्कि दुनिया और आखिरत में कोई मनसब, कोई ओहदा, कोई रुतबा, कोई हैसियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब और ओहदा से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे आम में खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं। देखो, हुजूर ने बात काम किया है کہ اگر کسی سے معاملہ کرتے وقت مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، یا میں نے کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت اور آبرو پر کوئی زیادتی کی ہو، تو آج میں یہاں سب کے سامنے موجود ہوں، اگر وہ چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ پہلے بھی گزر چکا کسی سبق کے اندر، کسی نمبر میں، آج پھر آ رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمر پر مارا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی کو مارا ہو، لیکن اگر تمہیں مارنا یاد ہو تو بدلہ لے لو۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر مارا تھا، آپ نے مارا تھا، اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، میری کمر پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ برابر بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی کمر پر بھی کپڑا نہ ہو۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چادر ہے، ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا لی اور فرمایا کہ اب بدلہ لے لو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک سے چادر ہٹائی تو بظاہر تو معاملہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے وہ ایسا بول بھی رہے ہیں اور آپ اس پر کوئی غصے بھی نہیں ہو رہے، آپ چادر بھی ہٹا رہے کہ بدلہ لے لو۔ دیکھو کتنا زبردست، اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے ایسا کر رہے، تو کیا آپ کی عزت گھٹی؟ بلکہ عزت اور بڑھتی ہے، یہ سبق ملتا ہے امت کو۔ تو فرمایا چادر ہٹائی تو مہر نبوت نظر آنے لگی۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف، پیٹھ کی طرف گئے اور مہر نبوت کو جا کر بوسا دیا اور کہا کہ میرا مقصد تو مہر نبوت کا بوسا لینا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے، تو ہما شما کس شمار و قطار میں ہیں؟ تو ہم سب پھر کہاں پر؟ جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، بدلہ لینے کے لیے بھی آ گئے تو تیار، ایسا نہیں کہ بھاگ گئے۔ ہم تو اگر کوئی آ بھی جاوے تو بولے مر گئے۔ آئے اللہ اکبر، دیکھو یہ دین ہے، دین، اس دین کو بھی زندگی میں لانا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین اہم ہے، یہ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے۔ بہرحال انسان یہ کہتے ہوئے کیوں شرمائے کہ میری غلطی پر مجھے معاف کر دو؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس ملازم و نوکر سے تعلق نہیں رکھنا تو صاف صاف الفاظ میں اسے معافی مانگ لو، اور معافی مانگنے میں کبھی شرم کو آڑے نہ آنے دو۔ جی، معافی مانگنے کو بھی آڑے نہ آنے دو۔ فرمایا معافی کا دروازہ بند ہونے سے پہلے معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر، معافی کا دروازہ بند ہونے سے پہلے معافی مانگ لو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ذمے دوسروں کا کوئی جانی یا مالی حق ہو، جس شخص کے ذمے، جس انسان کے ذمے دوسرے کا کوئی جانی یا مالی حق ہو، وہ آج اس شخص سے معاف کرا لے جس کا حق ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ معافی کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج تو تم اس کی خوشامد کر کے معاف کرا لوں گے، یا کوئی اس کو معاوضہ دے کر، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر معاف کرا لوں گے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تمہارے پاس اس کو پیش کرنے کے لیے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ آخرت میں تو وہاں کی کرنسی استعمال ہوں گی، اور وہاں کی کرنسی نیکیا ہے، وہاں پر تو حق کی معافی کے لیے یا تو اپنی نیکیا اس کو دینی پڑے گی، یا اس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے، اس کے حق کو ادا کرنے کا اور اس کے وبال سے بچنے کا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لہذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے معاف کرا لو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے معاف کرا لو۔ جی پچھلا کیا 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 ہے وہ سوچو، مراقبہ کروں گے تو سب یاد آئے گا، سب یاد آئے گا۔ مراقبہ کرے، ایک بہن کی کاغذاری آئی کہ اس کے اس زمانے میں کئی سال پہلے کسی دکان سے کوئی چیز لی تھی اور پیسے نہیں دیے تھے یا کم دیے تھے، ان کے آگے کارگزاری آئی، اس کو بتایا اور اس کو کہنے لگی کہ ہم کیا کرے اس کو، ابھی ابھی نہ وہ دکان ہے نہ وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے کیسے کرے۔ معافی کا دیکھو شوق پیدا ہوا۔ تو فرمایا جس دن وہ دروازہ بند ہو جائے گا معافی کا، اس وقت پھر کیا کروں گے؟ پھر اس کے بعد تو آخرت میں تو نیکیاں دینی پڑے گی۔ اگر یہ ایک حدیث ہماری سمجھ میں آ جاوے تو انسان اپنا مال پورا کا پورا دے کر بھی اگر اپنی زندگی کو اور معاملے کو صاف کرتا ہے تو سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ اس حدیث نے تو ہلا دیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی مانگنے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، حضرت حکیم الامت ماں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی مانگنے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وفات سے چند سال پہلے ایک رسالہ لکھا تھا۔ یہ بھی ایک اعلان ہوتا جیسے نیوز میں دینا۔ اس رسالے کا نام تھا العذر والنذر، العذر والنذر۔ اس رسالے میں لکھا تھا کہ ساری عمر میرا جن لوگوں سے تعلق رہا، نہ جانے مجھ سے کس کی کیا کیا حق تلفی ہوئی ہو، اللہ اکبر، میں آج ان حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ حقوق ہے، حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ٹیچر ہے تو پڑھا رہا ہے تو اس سے بھی حق تلفی طلبہ کی ہوتی ہے، کوئی شیخ ہے اس کے مریدین ہوتے ہیں تو اس میں بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اولاد ہے، ماں باپ ہے تو اولاد کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، اولاد ہے تو اس کی ماں باپ سے بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ ایسے دکاندار ہے تو اس کے ماتحت میں کام کرنے والے، کمپنی کا مالک ہے تو اس کے ساتھ میں جتنا اسٹاف ہے ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تھے، حضرت نے فرمایا، ایک رسالہ لکھا، فرمایا میں آج ان حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں، اگر کسی کا مالی حق میرے ذمے ہے اور مجھے ادا کرنا یاد نہیں رہا تو مجھے یاد دلا کر وہ حق وصول کر لے۔ ہاں ہوتا ہے بعض مرتبہ معمولی رقم رہ جاتی ہے اور یاد بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کو یاد آتا ہے تو وہ کہتا اب اتنی رقم کیا میں لوں، اور حق باقی رہتا۔ ہاں اگر وہ معاف کر دے اور ہم بھی اس سے معافی مانگ لیں تو پھر معاف ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا جانی حق ہے تو وہ اگر مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے لے، معاف کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر یہ رسالہ خط کی شکل میں اپنے سارے متعلقین کو بھیجا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ دیکھو کیا دین ہے، اس کو کہتے ہیں دنیا کو سمیٹ رہے ہیں اور آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج تو ہم آخرت کو ایسا بھولے ہیں کہ گویا ہمیں سفر کرنا ہی نہیں ہے، ایسا بھولے ہوئے ہیں ہر ایک کہ گویا سفر کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں، ہم تو یہیں رہنے والے ہیں۔ ارے ہر ایک کو جانا ہے، سفر کی تیاری شروع کرو، اور سفر کی تیاری میں جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، وہاں معافی مانگنا بھی ہے، وہاں حقوق کا ادا کرنا بھی ہے، وہاں تواضع اور عاجز اور نیچا بننا بھی ہے۔ یہ نیچا بننا، تواضع اختیار کرنا، یہ آخرت کے سفر کی تیاری ہے۔ ہاں دنیا کے سفر کی تیاری مہینوں پہلے شروع کر دیتے ہیں، کبھی حج کا سفر ہو تو مہینہ دو مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، تو آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے کہ واپس آنا نہیں ہے۔ یہ تو پکا یقین ہے سب کو کہ ہم ایک بار جائیں گے दो बार आने वाले नहीं, ये वन वे है, टू वे नहीं है, एक बार जाना है सिर्फ, और तैयारी पूरी पूरी करके जाना है, क्योंकि दोबारा वापस आ नहीं सकते तैयारी करने के लिए। तो इसकी तैयारी यही है कि माफी मांग लो, किब्र को खत्म कर ले। देखो हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी मांगी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का माफी मांगना, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने भी वफात से तकरीबन 2 साल पहले माफी का एक मजमून मुझसे लिखवाया, फिर उसको कुछ तलाफी माफात के नाम से अल बलाग में भी शाये किया और फर्दन फर्दन भी अपने मुतालिकीन के पास भेजा, उसके जरिए अपने तमाम मुतालिकीन से माफी मांगी। लिहाजा ये माफी मांग लेना हठी की बात नहीं है, यानी जिल्लत की बात नहीं है, उससे इंसान की इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि उसके जरिए इंसान आखिरत की जिम्मेदारी से सबुकदोश हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जरिए तकब्बुर का खात्मा हो जाता है, इलाज भी हो गया तकब्बुर का और आखिरत की तैयारी भी हो गई। और अगर इस मुलाजिम और नौकर से आइंदा ताल्लुक बाकी रखना है, यहां पर बात चल रही थी कि मुलाजिम और नौकर से ताल्लुक नहीं रखना है तो माफी मांग लो, ताल्लुक रखना है तो उस सूरत में सराहतन उससे माफी मांगने की सूरत में, अगर उसके सरकश होने का अंदेशा हो तो उस सूरत में उसके साथ किसी उनवान से उसकी दिलदारी कर लो, मसलन उसको कोई हदिया दे दिया, कोई तोहफा दे दिया, उसका दिल खुश कर दो। नौकर और मातहत के बारे में इतनी ताकीद क्यों है ये समझो जरा। नौकर और अपने मातहत में जो काम करते ऐसे लोग हैं कि उनके साथ इंसाफ अल्लाह ताला की खास तौफीक ही के जरिए हो सकता है। बिल्कुल सच्ची बात है, आज नौकर से शायद कोई हो जिससे ज्यादती न होती हो जाती है। कभी कभी हम नौकर से काम ज्यादा लेते हैं पैसे कम दे, कभी कभी गलती छोटी की है डांटते जाता है, अभी उनकी अकल के हिसाब से उसने काम सही करने गया था उससे भूल हो गई, बहुत बहुत ज्यादती होती है। अगर गौर करो तो ये देखो, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अगर इसकी जगह पर होता तो मैं क्या करता। अपनों को ये देखो कि अगर मैं इसकी और ये मेरी जगह पर होता तो मैं क्या चाहता था इससे, तो बस जो मैं चाहता वही मैं भी इसके साथ करूं, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये बनाया है और ये मेरे नीचे काम कर रहा है, अगर मैं ही इसके साथ काम करता और ये मेरा मालिक होता तो मैं क्या चाहता। बस जरा इतना सा सोचोगे तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे, सारा तकब्बुर खत्म हो जाएगा, दिल नरम हो जाएगा कि अगर मुझे, और अल्लाह कादिर है उस बात पर कि अल्लाह इसी को मेरी जगह पर खड़ा कर दे, मुझे उसकी जगह पर खड़ा कर दे, अल्लाह कादिर है उस बात पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक अच्छी जगह दी है, तो उस पर फख्र न करें, बल्कि इसीलिए फरमाया कि नौकर और मातहत के साथ में ज्यादती तो हो ही जाती है, अक्सर और बेहतर इंसान अपने मातहतों के मामले में इंसाफ से आगे तजावुज कर जाता है, इसलिए कि वो मातहत अपनी गिरफ्त और अपने पंजे में होता है और वो सुन भी लेता है, क्योंकि अब बेचारा सोचेगा कि मैं कहां जाऊंगा, वो दो आंसू तन्हाई में जाकर बहा लेता है लेकिन सुन लेता है, जगह को नहीं छोड़ता, बोले मैं जाऊंगा तो फिर मैं फिरूंगा, मैं कहां से खाऊंगा, फिर मेरे कैसे में घर का किराया दूंगा, तो वो बातों को सुन लेता है और तन्हाई में जाकर रोता है, मालिक की डांट भी सुन लेता है, अपने पंजे में होता है, हम जब चाहे उसको डांट सकते हैं, जब चाहे उसकी खबर ले सकते हैं, तो चूंकि मातहत पर इंसान को कुदरत हासिल होती है, इसके नतीजे में वो इस कुदरत को हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करने से कासिर रहता है, रहने से कासिर होता है और उस कुदरत को गलत इस्तेमाल कर जाता है, इसलिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। इसलिए आपकी नसीहतों में यह भी था कि भाई वमा मलकत अईमानुकुम, जो आखिर आखिर में जो अल्फाज सला वमा मलकत अईमानुकुम, تو یہ کیا تھا؟ فرمایا تم ان کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہے، اس میں بیوی بھی آ گئی. اگر شوہر ہے تو بیوی پر بھی بہت زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مار داڑ بھی ہوتی ہے، اس پر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر پھر روتی ہے، کیا کرے کہاں جائے، عزت کو رکھنا ہوتا ہے. تو ہم ایسا نہ کرے، اگر ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں. ماتحت میں سب آ گئے. اس لیے کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لے، اس میں کیا، اس سے محبت پھر اور بڑھتی ہے. ہو جاتا ہے انسان کبھی کبھی جوش میں ہوتا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ یہ سب معافی مانگنا کیوں ہے، کہ غلطی انسان سے ہوگی، جب ہی تو اس کا علاج بتایا کہ تمہاری اس میں ترقی ڈبل ہوگی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ کسی واقعی غلطی پر ہی سزا دے رہے ہوں گے، بلا وجہ تو سزا نہیں دے رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مارتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ عجیب بات، یعنی جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالی کو اس سے زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے. سوچو، ہم اگر اپنے ماتحت لوگوں کو جتنا ڈانٹتے ہیں تو مجھے قدرت حاصل ہے ڈانٹنے کی، فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ تو اس سے مجھ سے بھی زیادہ قدرت حاصل ہے کہ وہ مجھے ڈانٹے، ہے کہ نہیں، وہ مجھے مارے. تو ہم اس کو تو بھول ہی جاتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں سب کچھ. نہیں بھائی، ہم بھی تو کسی کے غلام ہیں. اگر ہم نے اپنے ماتحت پر زیادتی کر دی ہے تو اللہ کے ماتحت میں ہم بھی ہیں، تو اللہ بھی ہم پر زیادتی کر سکتا ہے، اس پر بھی قدرت ہے. لیکن اس نے تو ہمیں نعمتوں سے پالا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نوکر بنایا، اور تم آج اس پر زیادتی کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حالانکہ کوئی بلا وجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے. ہاں، مطلب یہ تھا کہ ذرا اس بات کا دھیان کرو، مطلب یہ تھا کہ ذرا اس بات کا دھیان کرو کہ اس قدرت کو صحیح اور برمحل، یعنی صحیح جگہ پر مناسب حدود میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں. قدرت تو حاصل ہے، لیکن قدرت کو صحیح جگہ استعمال کرو، حدود کے اندر استعمال کرو، حد سے آگے. ٹھیک ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو تربیت کرو، اس کو ڈانٹنا بھی ہے حدود میں. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت کا مظاہرہ کرنے پر آ جائے تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ بتاؤ ذرا. اگر اللہ ہمارے ساتھ شروع کر دے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے. اللہ اللہ. بہرحال، ان چھوٹوں اور ماتحتوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تکبر کے بڑے امکانات ہیں، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی اپنے کسی چھوٹے سے مواخذہ کرتا ہوں، بدلہ لیتا ہوں، اس کی پکڑ کرتا ہوں، اس کو ڈانٹنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو الحمدللہ کبھی اس کے خلاف ورزی نہیں ہوتی، کہ ایک طرف تو اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور دوسری طرف دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ، یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا، اس کو ڈانٹ تو رہے، ساتھ ہی ساتھ دیکھو اس کو کہتے استحضار، غفلت نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے گا. بتائیے، جس شخص کے دل میں ہر وقت آخرت کی یہ فکر ہوگی، فکر لگی ہوگی، وہ کیسے حد سے تجاوز کرے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بابا نجم حسن رحمت اللہ علیہ جی نے یہ واقعہ سنایا. نجم حسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے جن کا نام بھائی نیاز تھا، وہ حضرت کے بہت قریب رہتے تھے، اس وجہ سے ذرا منہ چڑے خادم تھے. یعنی خادم جو قریب ہوتا ہے تو ذرا اس کے اندر ہوتا ہے نا، ناز نخرے ہوتے ہیں، منہ چڑھا اس کو کہتے ہیں. और जो किसी बड़े का मुंह चढ़ा होता है ना, जो बड़े का खादिम होता है, फिर उसके अंदर और ज्यादा वो होता है, वो दूसरों पर नाज भी क्या करता है। बकौल किसी के, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। शाह का मुसाहिब, हाँ यानी बादशाह का जो करीब होगा ना, तो जाहिर बात है दूसरों पर तो वो नाज करेगा, जरा अकड़ के चलेगा, देखा मैं कौन हूं, मैं बादशाह का करीब रहने वाला हूं और तुम्हारी तो बादशाह को देखने का भी मौका नहीं मिलता, तो जाहिर बात है। तो इसलिए हजरत वाला के पास जो आने जाने वाले मेहमान होते, तो बाज अवकात उनके साथ नामुनासिब अंदाज में पेश आते। अब जाहिर बात है उनका खादा खादिम था, तो हजरत अभी आराम कर रहे होते, तो ये बाहर होते, तो बाद लोग मिलने के लिए आते, तो उनको नामुनासिब अंदाज में पेश आता, कोई इकराम से बिठाना चाहिए, कहा हजरत आराम कर रहे हैं, आप बैठिए, बाद में बुलाऊंगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते, या कोई ना कोई ऐसी जिससे यानी बेअदबी वाले अल्फाज हो, मुनासिब अंदाज में पेश नामुनासिब अंदाज में पेश आते थे। तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को इसकी इतला हो गई, पता चल गया कि खादिम जो है इस तरीके से आने वाले मेहमानों के साथ में बेअदबी कर रहा है, कि ये भाई नियाज आने जाने वालों के साथ दुरुस्ती का मामला करते हैं, यानी सख्ती का मामला करते हैं। हजरत ने उनको बुलाया और सख्त लफ्जों में उनसे कहा, मियां नियाज, तुम आने वालों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हो और उनके साथ बदतहजीबी से बात करते हो। जवाब में उन्होंने कहा, हजरत झूठ न बोलो। क्या बोलता है? हजरत झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो। खादिम बोलता है, हजरत झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो। देखिए कि एक नौकर और खादिम अपने आका से कह रहा है कि झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो। अब उस वक्त तो और ज्यादा उस नौकर को डांटना चाहिए था ना, उस वक्त तो और ज्यादा उस नौकर को डांटना चाहिए था, लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए दूसरी तरफ चले गए, बजाय और गुस्सा होने के। आज तो हम क्या भड़कते हैं कि अच्छा तो ऐसा बोलता है, मैं झूठा और तू सच्चा, यूं हम तो क्या कहते हैं, तो फिर मैं झूठा तू सच्चा, बोल तो जरा, निकल जाए इधर से, और पता नहीं क्या क्या करते। अब हजरत थानवी देखो, अब क्या हजरत थानवी तो पहले डांटते नहीं, अब जाहिर बात है कोई इत्तिला मिली होगी और पक्की पक्की होगी, जब जाएगा और वो खादिम क्या कहे, हजरत झूठ बोलते हो, अल्लाह अकबर, हाँ इसको कहते हैं मुंह चढ़ा, नाज था, अल्लाह से डरो। तो हजरत फौरन नरम पड़ गए। ये वही बात है, देखो सहाबा की सिफत जिंदा होगी, क्या था, हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु का वाकया था कि वो एक बूढ़े को शराब पीते हुए देख लिया था, तो जब उसको पकड़ा तो उसने क्या कहा कि मैंने एक गलती की, तुमने तीन गलती की, याद आया वो किस्सा, क्या मैंने तो, अब वही हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु बजाय गुस्से होने के फौरन रोने लगे, अरे बाबा अल्लाह अल्लाह से, यानी रोने लगे कि अच्छा मैंने गलती कर ली। अब उससे पूछ रहे हैं कि भाई मेरी गलती बता दे, तू तो जो किया वो तो छोड़ दिया मैंने तुझे तो, लेकिन मेरी गलती बता दे ताकि मैं तो उस पर इस्तिगफार कर लू। तो वही सुन्नत जिंदा की हजरत ने, देखो वही सुन्नत जिंदा हो कि फौरन चुप हो गए और दूसरी तरफ चले गए। बाद में लोगों के सवाल करने पर हजरत वाला ने बताया, यानी जाहिर बात है अब लोगों के सामने उसको डांटा होगा और लोगों के सामने उसने भी हजरत को ऐसा कहा, तो हजरत तो एक तरफ हो गए, क्योंकि ऐसे वक्त में नफ्स आ जाता है ना। अब जाहिर बात है सारे लोग जमा हो, उनके सामने तुमने नौकर को डांटा और नौकर ने ऊपर से तुम्हें ऐसे कहा और मुरीदीन सारे बैठे हुए हो, लोग बैठे हुए हो, तो अब हमारे नफ्स में अंदर कितना भड़केगा, अच्छा सबके सामने मुझे ऐसा बोलता, तो नफ्स आ जाता है। तो हजरत उसी वक्त खामोश हो गए, बाद में लोगों के सवाल करने, लोगों ने सवाल पूछा कि हजरत ये क्या बात है, तो हजरत वाला ने बताया कि जब भाई नियाज ने मुझसे कहा कि झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो, उस वक्त मुझे मुतनब्बे हुआ कि मैंने एक तरफ बयान सुनकर उनको डांटना शुरू कर दिया था, एक तरफ की बात सुनकर मैंने उनको डांटना शुरू कर दिया था, अभी मैंने सिर्फ लोगों की बात सुनी थी कि उन्होंने लोगों के साथ ये ज्यादती की है, मुझे ये चाहिए था कि मैं उनका बयान भी सुनता और इनसे पूछता कि लोग तुम्हारे बारे में ये कह रहे हैं, बताओ ये सही है या गलत है। देखा, वो इसलिए चुप हो गए कि मैंने तो सुनी सुनाई बात उसको डांट दिया, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं है कि ये बात लोग कह रहे हैं सही है या गलत है। तो पूछता कि लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, बताओ ये सही या गलत, उनके बयान को सुनने के बाद डांटने का फैसला करता, लेकिन मैंने एक तरफ बात पर डांटना शुरू कर दिया, इस वजह से मुझसे गलती हुई, इसलिए मैं इस्तगफार करता हुआ चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा, ये है ईमान, ये ईमान है, इसको कहते हैं ईमान, याद रखो, ये ईमान की मोमिन हमेशा नरम हो जाता है। जब उसको कोई दूसरा डांट दे ना तो फौरन नरम हो जाता है। हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु को उस बूढ़े ने डांट दिया जबकि सामने गुनाह कर रहा है, तो जब डांटा तो मोमिन फौरन नरम हो गए, उसको अपनी तरफ हो गए कि ओहो मेरे से क्या गलती हुई, बता भाई। हजरत भी देखो, उसने डांट दिया तो फौरन हजरत अपनी तरफ मुतवज्जे हुए कि मेरे से कोई गलती हो गई है, और फिर बताया लोगों के सामने कि भाई देखो ये गलती हुई कि मैंने तो सुनी सुनाई बात पर डांट दिया, तहकीक तो की नहीं थी। तो हजरत बाबा नजम अहसन रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया सुनाने के बाद फरमाया, ये इन्होंने सुनाया बाबा नजमुल हसन, तो फरमाया सुनाने के बाद फरमाया कि मेरा ख्याल ये है कि भाई नयाज का ये मतलब नहीं था कि हजरत झूठ न बोले और अल्लाह से डरे, बल्कि उनका मकसद ये था कि जिन लोगों ने आपसे शिकायत लगाई है उनको चाहिए कि वो झूठ न बोले। देखो, यानी खादिम का भी मकसद क्या था, वो हजरत को नहीं डांट रहे थे, वो हजरत को नहीं कह रहे थे, फरमाया इनका मकसद ये था कि जिन्होंने शिकायत लगाई है उनको चाहिए कि वो झूठ न बोले और अल्लाह से डरे, लेकिन जल्दी में जबान से बराह रास्त हजरत वाला से खिताब करते हुए कह दिया कि झूठ न बोलो, अल्लाह से डरो। देखो दोनों के दिल कैसे थे। इससे हमारे लिए क्या सबक है कि हमें अगर कोई किसी के बारे में सुनाए तो फौरन डांट नहीं देना चाहिए। क्लास के अंदर भी क्या होता है, हम बाहर गए थे, आए और बच्चों ने शिकायत लगाई, उसने ऐसा किया, उसने क्या ऐसा किया, तो फौरन हमें सजा नहीं देना है बल्कि उनसे पूछना है क्या तुमने किया था, वो इनकार कर रहा है तो फिर और दूसरों से पूछो, तीसरे से पूछो, बात साबित न हो तो उसको थोड़ा सा डांट कर छोड़ दो, आइंदा ऐसा नहीं करना, लेकिन सजा तो जब पक्का मालूम हो जाए फिर उसके बाद उसको करो। कभी किया होता है थोड़ा सा और लगा देते हैं बच्चे बहुत। तो ऐसे घरों में भी कभी कभी बातें क्या से क्या लगा देते हैं, होते हैं ना बच्चों में भी, छोटा जो होता है ना छोटा, वो घर में आते ही सीधा बाप को सुनाएगा, उसने ऐसा किया, उसने किसा किया, होते बाजों के, तो वो उनकी बातों को सुनकर हम अमल न करें, पहले इस बात की तहकीक कर लिया करें। जी इंशाल्लाह दूसरा कल करेंगे। मुराकबा कर।